आज है 5 अगस्त दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। असम के कोकराझार में हमला, करीब 13 लोगों की मौत। विजय रूपाणी बने गुजरात के नए मुख्यमंत्री, और विवेचना में आज जानेंगे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के राजनीतिक पहलुओं के बारे में।
जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए, बहुत से चीजों में वो एक्सपर्ट थे। एजुकेशन हेल्थ में वो एक्सपर्ट थे, फॉरेन अफेयर्स में वो एक्सपर्ट थे, इंटरनल सिक्योरिटी में वो एक्सपर्ट थे, इकोनॉमिक्स में वो एक्सपर्ट नहीं थे।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। पूर्वोत्तर राज्य असम के कोकराझार में एक भीड़भाड़ वाले बाजार में संदिग्ध बोडो उग्रवादियों की गोलीबारी में कम से कम 13 लोगों की मौत की आशंका है और करीब 20 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि हमले के लिए उग्रवादी गुट नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जिम्मेदार है। पुलिस ने कोकराझार में सुरक्षा बढ़ा दी है और अन्य हमलावरों की तलाश जारी है। असम के DGP मुकेश सहाय ने बीबीसी को बताया कि सुरक्षा बलों ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के एक चरमपंथी को मार दिया है। गुजरात में आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद गुजरात भाजपा के अध्यक्ष विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री चुना गया है। गुजरात सरकार में मंत्री रहे नितिन पटेल को उप मुख्यमंत्री चुना गया है। विजय रूपाणी गैर पटेल नेता हैं और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो गुजरात भाजपा के अध्यक्ष और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले अकेले ऐसे सदस्य हैं। उन्हें अमित शाह का करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने जा रही है। उम्मीद है कि मरकाना स्टेडियम में शुरू होने जा रहे रियो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह को टीवी पर लाखों लोग देख सकेंगे। चर्चा है कि मरकाना स्टेडियम में महान फुटबॉलर पेले ओलंपिक की मशाल को प्रज्वलित करेंगे। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के कार्यकारी निर्माता मार्को बालिच ने BBC को ये बताया।
We're going to make a profound statement all throughout the ceremony about.
उद्घाटन समारोह में हम पर्यावरण से जुड़ा संदेश देने वाले हैं। बीजिंग और एथेंस की तरह ये समारोह बहुत भव्य नहीं होगा, ना ही लंदन ओलंपिक खेलों की उद्घाटन समारोह की तरह हाईटेक होगा, लेकिन ये मानवीय संवेदनाओं से भरा होगा। इसमें पर्यावरण को लेकर मजबूती से संदेश दिया जाएगा। ब्राजील में आखिरी उद्यान बचा है और वो है अमेज़न। हमें इसे बचाना है। हर खिलाड़ी एक बीज लेकर स्टेडियम में पहुंचेगा। करीब 12,000 बीज होंगे जिन्हें रियो डी जेनेरो के पास स्थित देओदोरो में एक ओलंपिक वन में लगाया जाएगा। ये थे मार्को बालिश के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके में आपात स्थिति में उतारे गए एक विमान के चालक दल की तलाश जारी है। ये विमान तालिबान के नियंत्रण वाले लोगार प्रांत में गुरुवार को आपात स्थिति में उतारा गया था। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये विमान पाकिस्तान के पंजाब सरकार का है और इसे उज़्बेकिस्तान के रास्ते रूस जाते हुए अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी। माना जा रहा है कि विमान के चालक दल में एक रूसी व्यक्ति और पाकिस्तान के रिटायर्ड अधिकारी शामिल हैं। तालिबान ने BBC को बताया है कि विमान के बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर लाइव रेडियो BBCHindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। उत्तर पूर्वी राज्य असम के कोकराझार में हुए हमले में करीब 13 लोग मारे गए हैं और 15 से अधिक घायल हो गए हैं। ये हमला बालाजान तिनाली बाजार में हुआ। ये घटना करीब दिन में 11:45 पर हुई। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन पुलिस ने BBC को इस हमले में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड सोंगबिजीत गुट की भूमिका बताई है। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे राज्य को अस्थिर करने की कोशिश बताया। पूरी जानकारी के साथ गुवाहाटी से दिलीप शर्मा।
असम के कोकराझार शहर के पास बालाजान तिनियाली में शुक्रवार को संदिग्ध बोडो उग्रवादियों की गोलीबारी में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक घायल बताए गए हैं। मरने वालों में अधिकतर बोडो समुदाय के लोग हैं। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए गुवाहाटी भेजा गया है। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई में एक चरमपंथी की मौत हो गई है। उसके पास से एक AK-47 राइफल और एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। घटना की जांच कर रही पुलिस ने कुछ संकेत के आधार पर इस हमले के पीछे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के संघविजित अलगाववादी समूह का हाथ बताया है। हालांकि अब तक किसी भी चरमपंथी संगठन ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। असम के पुलिस महानिदेशक मुकेश सहाय ने कहा,
कोकराझार इज अ प्लेस कॉल्ड बालाजान अबाउट 13-14 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोकराझार। देयर सस्पेक्टेड सीरियस टाइप अटैक फ्रॉम
कोकराझार से करीब 40 किलोमीटर दूर बालाजान नामक एक स्थान है, जहां के एक मार्केट इलाके को निशाना बनाते हुए संदिग्ध उग्रवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में NDFB के एक उग्रवादी को मार गिराया है। ये थे असम पुलिस महानिदेशक मुकेश सहाय के शब्द। बालाजान के साप्ताहिक बाजार में शुक्रवार को दिन के करीब 11:45 बजे स्थानीय लोग जब साग सब्जी खरीदने में व्यस्त थे, ठीक उसी समय अचानक चरमपंथियों ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। घटना के बाद बाजार में मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, मैं अपने चेम्बर के भीतर था, कुछ रोगियों को देख रहा था, तभी गोली चलने की आवाज सुनी। मैंने अपने पेशेंट को बाहर जाने से मना किया, लेकिन इस बीच एक व्यक्ति सड़क पर तोड़ रहा था और उसे नकाबपोश बंदूकधारी ने गोली मार दी। मैंने सिर्फ एक हमलावर को देखा, वो देखने में काफी युवा था और सेना की पोशाक पहने हुए था। चरमपंथियों ने लोगों पर फायरिंग करने के अलावा हैंड ग्रेनेड से हमला किया, जिससे पास के मकान में आग लग गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर जल्द ही काबू पा लिया। इस बीच मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने निर्दोष लोगों पर किए गए इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, कोकराझार के बालाजान में निर्दोष लोगों पर आज उग्रवादियों द्वारा किया गया हमला एक कायराना हरकत है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। निर्दोषों पर हमले करने वालों से हमारी सरकार सख्ती से निपटेगी। पुलिस महानिदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों को घटना स्थल पर भेजा गया है। इस घटना में मरने वालों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार मृतकों के परिजनों को 5 लाख और जख्मी लोगों को 1 लाख रुपए का तत्काल मुआवजा देगी। वहीं घायलों का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। ये थे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के शब्द। फिलहाल NDFB संघविजित के कैडरों की तलाश में व्यापक स्तर पर सैन्य अभियान छेड़ा गया है। सुरक्षा जानकारों का ये मानना है कि पिछले कुछ दिनों से NDFB चरमपंथियों के खिलाफ की गई कार्रवाई में संगठन के कई कैडर मारे गए थे और उसी बदले की भावना से अलगाववादियों ने ये हमला किया है। इससे पहले इलाके में ये चरमपंथी गुट कई बड़े हमले कर चुका है, लिहाजा बोडो बहुल इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
असम के कोकराझार में हमला, करीब 13 लोगों की मौत। इस हमले के बाद घटनास्थल पर अतिरिक्त सैन्य बल को भेज दिया गया है और इस बीच गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि पिछले 2 साल में इस इलाके में शांति कायम रखने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। इस खबर पर नजर बनाए हुए थे दिल्ली से BBC संवाददाता सलमान रावी। सलमान, NDFB संघविजित जो गुट है, उसने 2014 में भी कोकराझार में हमला किया था, जिसके बाद गिरफ्तारियां हुई, 2 साल तक शांति रही, लेकिन अब फिर यह हमला।
जी, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि किरण रिजिजू ने, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि काफ़ी लंबे समय तक शांति थी पूर्वोत्तर राज्यों में और अचानक इस हमले ने फिर से सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो किरण रिजिजू ने आज संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा,
Peace had actually returned to entire Bodoland area in Assam, and Kokrajhar being the center of Bodoland, it was absolutely necessary to ensure that the peace prevails in Kokrajhar also, and we were successful.
Kiran Rijiju keh rahe the ki aakhirkar Bodoland ke ilake mein jo bahut disturbed raha hai, wahan par shanti bahal ho gayi thi. Wo bhi sahi hai, kyunki 2014 ke December maah mein 34 logon ki hatya ki gayi thi और इसमें भी बोडो चरमपंथियों का हाथ बताया जाता है, और ख़ास तौर से नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जिसकी बात की जा रही है जो इसमें शामिल है। लेकिन क्या है कि ये जो पूरा इलाका है असम का, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पिछले 3 दशक में लगभग 10,000 लोग हिंसा का शिकार हुए हैं, मारे गए हैं। इसमें सिविलियंस भी हैं, सुरक्षा बल के जवान भी हैं और चरमपंथी भी हैं। और ख़ास बात ये मैं बताता हूँ कि अचानक अब ये सवाल ये उठता है कि ये था कौन।
जी, ये जो NDFB जो है ये अलग हुआ धड़ा है सोंगजबी जो है, इसके बारे में बताइए
जी। इसमें क्या है कि
बहुत संक्षेप में
जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रंजन दायमरी हैं जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के जो अध्यक्ष थे, वो उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश में गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद भारत को हैंडओवर कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये कठार सोंगबिजीत जो हैं ये बेसिकली कार्बी ट्राइब से बिलोंग करते हैं और इन्होंने फिर ये एक अलग अपना गुट बना लिया है। ऐसा सुरक्षा बलों को आशंका है कि इनके संबंध उग्रवादी संगठनों से भी हो सकते हैं।
जी, तो असम के कोकराझार में हमला, 13 लोगों की मौत। पूरी जानकारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सलमान रावी आपका।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
आप सुन रहे हैं दिन भर सुशीला सिंह के साथ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि विजय रूपानी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वहीं राज्य का उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल होंगे। इस बैठक में राज्य के विधायकों के साथ वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी भी मौजूद थे। विजय रूपानी राज्य में पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैंने अब से थोड़ी देर पहले अहमदाबाद फोन कर स्थानीय पत्रकार अंकुर जैन से पूछा कि कई नाम चर्चा में थे पिछले 2 दिन से, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह डेरा जमाए हुए हैं वहां पर, लेकिन आखिरकार नाम निकल कर आया विजय रूपानी का।
बिल्कुल सुशीला जी, पिछले 2 दिनों से कई नामों की चर्चा हो रही थी और आज सुबह से तो बिल्कुल ये तय था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नॉर्थ गुजरात में पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया था, पूरे राज्य में सेलिब्रेशन हो रहे थे, मुख्यमंत्री जो है वो पटेल है। लेकिन अचानक जब मीटिंगों का दौर चलता रहा तो असमंजस का माहौल था। एक तरफ लोग पटाखे फोड़ रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ता नितिन पटेल को अपना गुजरात का नया मुख्यमंत्री बता रहे थे, वहीं अचानक अमित शाह की अध्यक्षता वाली बैठक से ये ऐलान हुआ कि नए मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, जो हाल में गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ, 30 से अधिक सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको बता दूं कि विजय रूपानी जो हैं वो मोदी और अमित शाह के बेहद करीब माने जाते हैं।
जी अंकुर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वो करीबी माने जाते हैं, साथ ही ये भी कहा जाता है कि पार्टी काडर में उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है और वो एक गैर विवादास्पद नेता हैं।
बिल्कुल सुशीला जी, विजय रूपानी जो है वो गुजरात के राजकोट से जुटे हुए MLA हैं और 2014 में जब ये सीट खाली हुई थी तब चुनाव लड़के वो पहली बार विधायक बने थे, लेकिन उससे पहले वो 1971 से जनसंघ के साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी की जो भी मुहिम हुई है, वो इमरजेंसी के दौरान हो या गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हो, उसमें काफी सक्रिय रहे हैं। और ABVP से बीजेपी और बीजेपी से आज चीफ मिनिस्टर का जो उनका पूरा जो कार्यकाल रहा है वो बड़ा नॉन कंट्रोवर्शियल सा रहा है। वो गुजरात की जो बनिया जैन कम्युनिटी है, स्ट्रांग कम्युनिटी से आते हैं और खुद पेशे से वकील हैं और संघ के और मोदी और अमित शाह तीनों के बेहद करीब माने जाते हैं। तो उनके नाम का जब आज ऐलान हुआ तो किसी भी तरह का विरोध जो लग रहा था कि अचानक नितिन पटेल के नाम से शायद रूपानी का नाम अनाउंस हो तो बीजेपी कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं विरोध इस बात का हो सकता है, पर इस तरह का कोई भी विरोध अभी तक तो नहीं देखा गया है।
जी, 2017 में वहां विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आगामी चुनाव को देखते हुए इस फैसले को कैसे देखा जाना चाहिए अंकुर?
देखिए, ये आनंदीबेन का ने जो अचानक पिछले दिनों इस्तीफा देके जो गुजरात में एक राजनीतिक भूकंप सा आ गया था और उसके पहले जो पिछले साल पाटीदार आंदोलन हुआ था और इस साल दलित आंदोलन, उसको लेकर विजय रूपानी के लिए आने वाले दिन कठिन जरूर होंगे। उनके पास गुजरात में अगले चुनाव दिसंबर 2017 में है और एक साल में उनके पास जहां ये आंदोलन है वहीं वाइब्रेंट गुजरात आ रहा है और जहां एक बीजेपी की तरफ एक आक्रोश नजर आ रहा है राज्य में, जहां उनकी आलोचना भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी कमजोर होगी, वहीं आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां भी बीजेपी में गुजरात में सक्रिय हो रही है, तो उसको लेकर उनके लिए चुनौती तो बनी रहेगी। पर क्योंकि उनकी एक एक्सेप्टेंस है लार्जली पार्टी में, तो अब ये देखना होगा कि वो आने वाले दिनों में क्या बीजेपी को गुजरात में मजबूत कर पाएंगे।
विजय रूपानी होंगे राज्य के नए मुख्यमंत्री। ये थे अहमदाबाद से अंकुर जैन।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या भारत रियो ओलंपिक में इतिहास रच पाएगा? 2012 के लंदन ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 पदक जीते थे। रियो ओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है। व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का दावा है कि वो बेहतरीन प्रदर्शन को तैयार हैं। पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जाहिर कीजिए बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 6 अगस्त शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब समय है विवेचना का। जब पीवी नरसिम्हा राव 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। इसके बावजूद वो गांधी नेहरू परिवार के बाहर पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उन्हें 1991 के आर्थिक उदारीकरण का पुरोधा माना गया, लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस में उनकी भूमिका पर सवाल भी उठाए गए। पिछले दिनों विनय सीतापति की किताब हाफ लायन हाउ नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया प्रकाशित हुई, जिसमें नरसिम्हा राव के राजनीतिक जीवन के कई पहलुओं को छुआ गया। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर डाल रहे हैं इस चर्चित पुस्तक के विभिन्न पक्षों पर।
जॉन एफ कैनेडी और फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी की जीवनी लिखने वाले नाइजल हैमिल्टन कहते हैं कि बायोग्राफी इज सिंपली द ऑर्फन ऑफ एकेडेमिया। अगर कोई नेता वो सब करता है जो ऐतिहासिक ताकतें उसके लिए अपरिहार्य कर देती हैं, तो फिर वो व्यक्ति उतना माने नहीं रखता जितना कि समय का वो क्षण। अगर आप इस संदर्भ में नरसिम्हा राव को देखें तो उनकी राजनीतिक पारी का 1971 में एक तरह से अंत हो चुका था। रॉजर्स रिमूवल कंपनी का ट्रक उनकी किताबों के 45 कार्टन लेकर हैदराबाद रवाना हो चुका था। ये अलग बात है कि उनके एक नौकरशाह मित्र ने, जो शौकिया ज्योतिषी भी थे, उनसे कहा था कि इन किताबों को यहीं रहने दीजिए, मेरे हिसाब से तो आप वापस आ रहे हैं। विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लॉयन में लिखते हैं कि नरसिम्हा राव इस हद तक रिटायरमेंट मोड में चले गए थे कि उन्होंने दिल्ली के मशहूर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया था, ताकि अगर भविष्य में वो कभी कुछ दिनों के लिए दिल्ली आए तो उन्हें रहने की दिक्कत ना हो। तभी अचानक जैसे सब कुछ पलट गया। 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस घटना के कुछ घंटों के भीतर यानी तड़के 22 मई 1991 को बीबीसी ने नरसिम्हा राव से संपर्क किया जब वो नागपुर से दिल्ली जाने वाला विमान पकड़ने की कोशिश कर रहे थे।
आप श्री राजीव गांधी की मौत के बाद अपनी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं?
बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं समझता हूं कि पार्टी इसको भी बर्दाश्त करेगी और अपनी ताकत को, अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेगी।
नरसिम्हा राव जी, मैंने दिल्ली फोन किया, कुछ प्रेक्षकों से बात की, कुछ हलकों से ऐसा सुनने में आया कि कुछ लोग आपके नाम पर विचार कर रहे हैं कि आपको पार्टी का नेता नियुक्त किया जाए।
मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेरे विचार में तय करेगी। पार्टी की अपनी मशीनरी है। अब मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ, मैं अभी नागपुर से बोल रहा हूँ।
राजीव गांधी की हत्या के बाद जब विदेश से आए मेहमान शोक व्यक्त करने के बाद वापस चले गए, तो सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के पूर्व प्रधान सचिव रहे परमेश्वर नारायण हक्सर को 10 जनपद बुलवाया। उन्होंने हक्सर से पूछा कि आपकी राय में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कौन व्यक्ति सबसे अधिक उपयुक्त है। हक्सर की सलाह थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। नटवर सिंह और अरुणा आसफ अली को जिम्मेदारी दी गई कि वो शंकर दयाल शर्मा का मन टटोलें। नटवर सिंह ने बीबीसी को बताया।
उन्होंने कहा कि अरुणा आसफ अली और नटवर सिंह को शंकर दयाल शर्मा के पास भेज दो, जो उपराष्ट्रपति हैं। अरुणा जी हमें चले गए था और हमने वो उनका पैगाम दिया कि सोनिया जी चाहती है कि आप प्रेसिडेंट बन जाइए कांग्रेस के, फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत बड़ी बात की है सोनिया जी, मेरा धन्यवाद दीजिए, मगर प्राइम मिनिस्टर के लिए 18-20 घंटे काम करना पड़ता है, अब मेरी उम्र और स्वास्थ्य साथ नहीं देगा तो मैं माफी चाहता हूँ। तो हम दंग रह गए साहब। तो फिर गए साहब, फिर बुलाया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ने कहा कि नरसिम्हा राव को बुला लो, इसलिए नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे।
नरसिम्हा राव भारतीय राजनीति के उबड़ खाबड़ धरातल से ठोकरे खाते हुए सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे। इस पद को पाने के लिए उन्होंने किसी राजनीतिक पैराशूट का सहारा नहीं लिया था। राव का कांग्रेस और भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर मनमोहन सिंह की खोज। विनय सीतापति बताते हैं,
जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए June 21, 1991, बहुत से चीज़ों में वो एक्सपर्ट थे। एडुकेशन हेल्थ में वो एक्सपर्ट थे, वो आंध्रा में एडुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर बन चुके थे और यूनियन मिनिस्टर भी बन चुके थे दिल्ली में। फॉरेन अफेयर्स में वो एक्सपर्ट थे, सो इंटरनल सिक्योरिटी में वो एक्सपर्ट थे, इकोनॉमिक्स में वो एक्सपर्ट नहीं थे। उनको एक चेहरा चाहिए, एक मुखौटा चाहिए था जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन IMF और डोमेस्टिक ओपोनेंट्स को एसुएज कर सके, उनको वो ज़रूरत थी। June 19, 1991 नरसिम्हा राव पास में विलिंगडन क्रेसेंट में थे, PC अलेक्जेंडर उनके सबसे बड़े एडवाइज़र हैं और नरसिम्हा राव PC अलेक्जेंडर से पूछते हैं, आई वॉन्ट एन इंटरनेशनली क्रेडिबल फेस एज फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज़ द कोट। अलेक्जेंडर ने उनको कहा कि आप IG पटेल से पूछिए, IG पटेल ने नहीं कहा। फिर PC अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह का नाम बोला। तो उस रात June 20th evening, वन डे बिफोर दी स्वेरिंग इन सेरेमनी, PC अलेक्जेंडर ने रात को मनमोहन सिंह को फ़ोन किया। तब मनमोहन सिंह जी सो रहे थे क्योंकि वो फॉरेन से आए थे और फिर उनको उठाया गया और उनको कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग June 21st 12 बजे स्वेरिंग इन सेरेमनी वो स्केड्यूल्ड। मेरे ख्याल से 8-9 बजे सुबह मनमोहन सिंह जी अपने घर से UGC ऑफिस गए, वो UGC चेयरमैन थे, और वहाँ पे एक फ़ोन कॉल आया। नरसिम्हा राव फ़ोन पे थे, उन्होंने कहा कि भाई आई वांट यू एज फाइनेंस मिनिस्टर, आप 12 बजे स्वेरिंग इन है, आप एक घंटे पहले आइए क्योंकि मुझे वो स्पीच के बारे में बात करना है, तो आप एक घंटे पहले आइए। और फिर नरसिम्हा राव ने उनको कहा कि इफ़ वी सक्सीड वी विल बोथ गेट द क्रेडिट, If we fail, you will have to go.
लेकिन नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी किरकिरी हुई जब केंद्र सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। कांग्रेस के अंदर और बाहर भी कई लोगों ने इसके लिए नरसिम्हा राव को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन विनय सीतापति इस मामले में नरसिम्हा राव को क्लीन चिट देते हैं।
November 1992 में 2 डेमोलिशंस प्लान हुए थे। एक था बाबरी मस्जिद का, BJP और संघ परिवार प्लान कर रहे थे, और दूसरा था नरसिम्हा राव का और अर्जुन सिंह और उनके जो राइवल्स हैं कांग्रेस पार्टी में, वो प्लान कर रहे थे। पूरे नवंबर में नरसिम्हा राव ने बहुत कोशिश की कि सबको डिसीशन मेकिंग में इंक्लूड करें। November 1992 में 5 या 6 CCPA कैबिनेट मीटिंग्स थे। उस मीटिंग्स में एक भी कांग्रेस कैबिनेट मिनिस्टर ने नहीं कहा कि कल्याण सिंह को अभी निकालना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी क्लियर कि only when law and order has broken down can you dismiss a government, not when law and order is about to break down. तो नरसिम्हा राव चाहते थे कि कोई और कहे कि प्लीज़ आप प्रेजिडेंस रूल इम्पोज करें, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, तो दे चोज टू ट्रस्ट कल्याण सिंह। ज्योति बसु भी आपके उनके स्पीचेस देखिए November 1992 में, वो कह रहे हैं कि यूजुअली वी डोंट सपोर्ट प्रेजिडेंस रूल बट इफ देर इज नो अदर वे टू प्रोटेक्ट द मॉस्क वी विल एग्री टू डिसमिस कल्याण सिंह। वो ये नहीं कह रहे थे कि वी डोंट ट्रस्ट कल्याण सिंह को अभी निकालो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है कि अगर सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के बीच में लड़ाई हो तो कौन जीत सकता है।
तो ये जो थ्योरी है कि उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और वो पूजा में लग गए और उन्होंने कोई फोन कॉल्स नहीं किए,
ये थ्योरी देखिए कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने अपने बुक में लिखा कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, तो ये दिस वॉज द ओरिजिन ऑफ दैट रूमर। तो फिर आप देखिए कि उनको कैसे पता था कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, क्या वो वहां पे थे? नहीं, उन्होंने पुस्तक में लिखा कि हम वहां पे नहीं थे बट एक सोशलिस्ट पॉलिटिशियन मधु निमये ने मुझे कहा था कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे हियर से। फिर आप पूछिए कि मधु निमये को कैसे पता है कि वो पूजा कर रहे थे, वो तो वहां पे नहीं थे। तो मधु निमये ने खुद कहा कि मेरा एक सोर्स है PMO के अंदर जिन्होंने मुझे कहा कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे। तो आप देखिए, ये एक रूमर है, आप मुझे पूछ रहे हैं ये रूमर, और जस्ट आप जाके देखिए कि ये रूमर के पीछे एविडेंस कहाँ है।
मैंने मशहूर पत्रकार सईद नकवी से पूछा कि क्या नरसिम्हा राव को इस मामले में ज्यादा से ज्यादा एरर ऑफ जजमेंट का दोषी माना जाए।
वो और चौहान दोनों, यानी दोनों खामोश बैठे रहे पूरे दिन, उनके होम मिनिस्टर थे, मस्जिद दिन भर गिर रही है, اور رات کو ان کے افسران ہم کو دکھائی دیتے ہیں یہاں پارٹی میں تو سب تلک لگائے ہوئے ہیں, یعنی گویا جیسے سیلیبریشن کر کے آ رہے ہیں. وہ ایک مبہم معاملہ ہے. میں الیج نہیں کروں گا کچھ, لیکن اثر جو مسلمانوں پہ ہوا اس کے بعد یہ کہ 140 سیٹیں آ گئیں, کبھی اتنے کم کانگریس کے نمبر نہیں ہوئے تھے, ڈیفیکٹ کر کے چلا گیا. اس کے بعد پارٹی ختم ہو گئی, پھر وہ ریوائیول ہو ہی نہیں پایا بابری مسجد کے بعد.
6 دسمبر 1992 کو جس دن بابری مسجد گرائی جا رہی تھی اس سمے راہو کی منودشا کیا تھی, اس کے ایک اور چشمدید گواہ ہیں ان کے اس سمے کے نجی چکتسک ڈاکٹر شری ناتھ ریڈی.
میں پہلے تو اچمبا رہ گیا تھا ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے, تو مجھے بھی دھکا لگا جو میں دیکھ رہا تھا. میرے من میں یہ آیا کہ پرائم منسٹر پہ کیا بیتتی ہوگی, سٹریس بڑھ گیا ہوگا ان کا بہت زیادہ. تو ایک ڈاکٹر کا فرض نبھانے میں چلا گیا وہاں پہ. وہ گھیرے ہوئے تھے وہاں پہ اپنے آفس میں اپنے آفیسرز کے ساتھ. مجھے دیکھ کے ایک دم اچمبا ہو گیا, پھر کہا کہ کیوں آئے اس وقت. تو میں نے کہا کہ سر آپ تھوڑا اس بازو والے کمرے میں آ جائیے. وہاں پہ آئے پھر تھوڑا ناراض تھے. نہیں نہیں اس وقت تھوڑی ہے دیکھنا ہے مجھے, اس وقت میں بزی ہوں. میں نے کہا جی نہیں میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, خالی بلڈ پریشر وغیرہ چیک کر لوں گا. تو اس سمے دیکھا کہ ان کا چہرہ لال تھا, کافی ایجیٹیٹڈ تھے. تو میں نے بلڈ پریشر لیا, کافی زیادہ تھا. پلس ریٹ بھی دیکھا تو اس کی گتی بہت تیز تھی. تو میں نے کہا سر تھوڑا دوائی مجھے اور دینی پڑے گی آپ کو. تو دوائی جو میں نے دیا وہ لے لیے, چلے گئے اندر.
ڈاکٹر ریڈی کہتے ہیں کہ راو کی جانچ سے یہ آبھاس نہیں ہوا تھا کہ ان کی اس ٹریجڈی میں کوئی بھومکا تھی. شریر کبھی جھوٹ نہیں بولتا. سونیا کی پسند پر پردھان منتری بنے نرسمہا راو اور سونیا کے بیچ 1993 آتے آتے کافی دوری بڑھ چکی تھی.
91 سے 93 تک مہینے میں دو بار وہ ٹینجن پر جاتے تھے اور ہفتے میں دو بار وہ فون پہ سونیا گاندھی جی کے ساتھ بات کرتی تھی. اور کبھی کبھار جب نرسمہا راؤ ٹینجن پر فون کرتے تھے تو سونیا گاندھی سیکرٹری وڈ کیپ ہم ویٹنگ فار 4-5 منٹس وائل سونیا گاندھی کیم آن دا فون. تبھی انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ مائنڈ بٹ دا پرائم منسٹر آف انڈیا مائنڈ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سونیا گاندھی نے ڈیلیبریٹلی یہ کیا, بٹ جب ایسے ہوا تو نرسمہا راؤ کو چوٹ تو لگی.
سیتاپتی اس کتاب میں رہسیوگھاٹن کرتے ہیں کہ 1996 میں جب اٹل بہاری واجپئی کی 13 دنوں کی سرکار بنی تھی تو انہوں نے نرسمہا راؤ کا سمرتھن لینے کی کوشش کی تھی. اس کی پشتی کرتے ہوئے نرسمہا راؤ کے جیوتشی اور راجنیتک سلاحکار رہے پنڈت این کے شرما کہتے ہیں,
دیکھیے اٹل بہاری واجپئی جی ہم کو جانتے تھے, انہوں نے بنگلور میں ہم کو آدمی بھیجا. انہوں نے تین چیزیں کہی تھی. پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی جی کی طرف سے یہ پرستاؤ تھا کہ نرسمہا راؤ کے اوپر جو تین کیسز چل رہے ہیں سینٹ کٹس جے ایم ایم لکھو بھائی پاٹک, تینوں کیس نرست ہو جائیں گے. 1997 وہ بھارت کے راشٹرپتی بنا دیے جائیں گے. کیول اور کیول ہمیں اس پرستاؤ کے اوپر مدد کی بات ہے. جب یہ بات میں نے نرسمہا راؤ سے کہی, نرسمہا راؤ نے کہا جس پارٹی نے مجھے مکھیہ منتری بنایا, جنرل سیکرٹری بنایا, میں ودیش منتری رہا, گرہ منتری رہا, سکشا منتری رہا اور اب 5 سال تک پردھان منتری رہا, آج کانگریس ادھیکش ہوں, پارٹی کے ہتوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے میں اپنے فائدے کے لیے کام کیسے کروں. انہوں نے ٹھوکر ماری اس آفر کو.
حالانکہ واجپئی کے پردھان منتریتو کال میں بھارت نے پرمانو پریکشن کیا, لیکن ونے سیتاپتی کہتے ہیں کہ بھارتی پرمانو پریکشن کے اصلی پتا میں نرسمہا راؤ تھے.
2004 میں جب نرسمہا راؤ کا دیہانت ہوا, این ایموشنل اٹل بہاری واجپئی نے کہا کہ اٹ از ناٹ آئی, نرسمہا راؤ از دا ٹرو فادر آف دا نیوکلیئر پروگرام. تو سب نے سوچا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ سب نے کہا کہ 1998 میں واجپئی واز دا ون ہو گیو پرمیشن فار ایکسپلوزنگ نیوکلیئر ٹیسٹ. تو وہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں. نرسمہا راؤ جب پردھان منتری بنے تو نیوکلیئر پروگرام واز ان اٹس انفنسی, تو انہوں نے پیسے بھی دیے, ٹیکنیکل ایکسپرٹائز دی, اور پھر میں نے یہ بھی دکھایا کہ انہوں نے امریکی پریشر کو کیسے نکال دیا. جب وہ 1996 میں انہوں نے ریزائن کر دیا تو وہ عبد الکلام اور چدمبرم کے ساتھ وہ واجپئی کے ساتھ گئے اور انہوں نے کہا کہ بام از ریڈی, سامگری تیار ہے, جب آپ چاہے اب کیجیے.
نرسمہا راؤ کے جیون کی ساندھبھیلا میں سوئم ان کی پارٹی نے ان سے کنارہ کر لیا. وہ بہت ایکاکی اور اپمانت ہو کر اس دنیا سے ودا ہوئے. نہ صرف ان کا انتم سنسکار دلی میں نہیں ہونے دیا گیا بلکہ ان کے پارتھیو شریر کو بھی کانگریس مکھیالے 24 اکبر روڈ کے اندر نہیں آنے دیا گیا. شاید کچھ سمے بعد ہی اتہاس ان کا صحیح مولیانکن کر پائے. ریحان فضل, بی بی سی دلی.
آپ ویویچنا دوبارہ وشو بھارتی میں صبح 8 بجے کل سن سکتے ہیں. اور اب مکھیہ سماچار.
बीबीसी समाचार। पूर्वोत्तर राज्य असम के कोकराझार में एक भीड़भाड़ वाले बाजार में संदिग्ध बोडो उग्रवादियों की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई है और करीब 20 लोग घायल हुए हैं। गुजरात में आनंदीबेन पटेल के बाद गुजरात भाजपा के अध्यक्ष विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री चुना गया है और नितिन पटेल को उप मुख्यमंत्री चुना गया है। ब्राजील के रियो डी जनेरो में पुलिस ने मोरक्को की ओलंपिक टीम के एक मुक्केबाज को यौन शोषण के एक मामले में गिरफ्तार किया। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।